मुहम्मद कवि जो प्रेम का, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। भारत के मध्ययुग का इतिहास दो भिन्न सभ्यताओं के टकराव और मिलन का इतिहास रहा है। 10वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक हिंदू तथा मुस्लिम सभ्यताएं लड़ती झगड़ती फिर भी इस मुकाम पर पहुंच गई थी कि 1883-84 ईस्वी के एक अंग्रेज पर्यवेक्षक को यह कहने के लिए मजबूर करती हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच के विभाजक 3 सदियों पहले आज की तुलना में बेहद कम थे। हिंदू और मुसलमानों के बीच की विभाजक रेखाओं को मिटाने में मध्ययुग के कई बुद्धिजीवियों ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया। इन दोनों सभ्यताओं के घात प्रतिघात वाद विवाद के बीच सूफी विचार एक संवाद की तरह है। सूफी मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह था जो कि तपश्चर्या, रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। संसार का त्याग यानी जुहद और खुदा पर भरोसा यानी तवक्कुल, सर्वेश्वरवाद और प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद यानी तसव्वुफ की ऊंची अवस्था पर पहुंच गया। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है। इसका अभिप्राय है कि मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम इश्क के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। खुदा में लीन यानी फना होने को इसने अपना लक्ष्य बनाया। सूफी ने मोटे तौर पर इस्लाम के संस्थात्मक लक्ष्य को विगलित करते हुए निजी साधना को ज़्यादा महत्व दिया। कई स्तरों पर इसने इस्लाम के रूढ़िवादी स्वरूप को चुनौती भी दी। हिंदुस्तान में सूफी मत के मिजाज सत्ता के साथ इसके संबंध को समझने के लिए अमीर खुसरो को रूपक की तरह देखा जा सकता है। अमीर खुसरो की एक ओर राजसत्ता से अत्यधिक समीपता थी तो दूसरी ओर अपने समय के सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती से भी अत्यंत नज़दीकियाँ थी। फारसी और हिंदी जुबान एवं तहजीब के मेलजोल के रूप में खुसरो हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अमीर खुसरो कई मसलों, पट्टन, रणथंभौर और चित्तौड़ की विजयों पर किस तरह वक्तव्य देते हैं वह एक दरबारी इतिहासकार की सीमा है। खुसरो पट्टन के अलाउद्दीन के द्वारा जीते जाने को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। शुद्ध अज शमशीर इस्लाम औ जमी पाक, चुना कज आफ्ताब आसमा खाक। इस्लाम की तलवार ने देश को उसी तरह शुद्ध कर दिया है जिस तरह सूरज पृथ्वी को शुद्ध करा देता है। रणथंभौर की विजय को ईश्वर की मर्जी से दारुल कुफ से दारुल इस्लाम बन जाने के रूप में देखता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनका कब हृदय अपने शेर में कुछ इस कदर बोल उठता है। मुल्के दिल कर दी खराबज तीरे नाज, व दरी वीराना सुल्तानी हनूज। तूने हृदय के देश को अपने नाज की तलवार से उजाड़ डाला और अब इस वीराने में तो सुल्तान बनकर बैठा है। जायसी का समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 16वीं शताब्दी का प्रारंभ है। 300 वर्षों के संतरत काल के अनेक शासकों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह साबित कर दिया था कि किसी एक धर्म के अनुयायियों के सहारे शासन संभव नहीं है। संतरत के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में हिंदुओं को आत्मसात करने के कई प्रमाण इतिहासकारों ने छोड़ रखे हैं। धर्मों के सह अस्तित्व की स्वीकृति के उदाहरण मिलने लगते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने मुबारक खिलजी का गुणगान करते हुए भारत के अन्य देशों में सर्वश्रेष्ठ कहने के साथ साथ हिंदुओं को अपने धार्मिक विश्वास, भाषा, ज्ञान और विज्ञान में अन्यों से बहुत आगे बताया है। सूफियों ने सांस्कृतिक मेलजोल की प्रक्रिया को और अधिक संश्लिष्ट बनाया। इसमें भाषा, साहित्य, विचार और कलाएँ एक दूसरे से प्रभावित होते और प्रभावित करते हमारी हिंदुस्तानी विरासत का हिस्सा बनती हैं। मेलजोल की यह प्रक्रिया जनता में किस रूप में घटित हो रही है, फारसी के शासकीय दस्तावेज से इतर जनपदीय भाषाओं में यह मेलजोल किस रूप में चित्रित है, इसे देखने के लिए जायसी के पद्मावत को देखना दिलचस्प होगा। जनपदीय भाषाओं में मौजूद साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन हमारे सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन को ज़्यादा समृद्ध करेगा। दैनंदिन व्यवहार से लेकर उच्च बौद्धिक प्रकर्षों में मेलजोल का जो रूप सोलहवीं शताब्दी में उभरता है उसके साहित्यिक स्रोत के रूप में पद्मावत को देखा जाना चाहिए। लगभग 200 साल के औपनिवेशिक ज्ञान ने किस कदर इस मेल जोल की प्रक्रिया को ताड़ा है इसका अनुमान भी हम जायसी से पा सकते हैं। मध्यकाल के लोक में किस तरह एक सेक्युलर मिजाज रूप ले रहा था इससे 1857 के बगावत के बाद अंग्रेजों ने सचेत रूप से समाप्त किया। उस समझ को अपनी समझ का हिस्सा बनाने में भी जायसी हमारी मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर मध्यकालीन जन संस्कृति के भीतर मेल जोल की यह प्रक्रिया किस रूप में मौजूद थी इसका प्रतिनिधित्व जायसी का पद्मावत करता है। सेक्युलर संवेदना एवं उसके भारतीय स्वरूप के सहज विकास को समझने के क्रम में भी जायसी एक बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। किसी कवि की सार्थकता इस बात में होती है कि वह हमारे सोचने समझने की दिशा को पहले से ज़्यादा मानवीय और सृजनात्मक बनाता है। जब तक हम अपनी विरासत के विचारों और मूल्यों की सापेक्षता में प्यार करते रहेंगे हमें सांप्रदायिक संकट से मुक्त होने के क्रम में निर्मित होने वाली वैचारिकी के लिए मध्यकालीन प्रतिभाओं में कबीर और जायसी सबसे ज़्यादा याद आएंगे। उनकी रचनाओं में फैले हुए विचार और मूल्य हमारे लिए आगे की राह बनाने में मदद करेंगे। जायसी को कबीर का पूरक मानते हुए शुक्ल जी ने हमारी जातीय संस्कृति के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक भूमिका को इस तरह बयां किया है। ये नोटेड काम है। 100 वर्ष पहले कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना हृदय खोलने लग गए थे। इसमें मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए थे और हिंदू मुसलमानों का दास्तान हमजा। ईश्वर तक पहुंचने वाला मार्ग ढूंढने की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ साथ बैठकर करने लगे थे। इधर भक्ति मार्ग के आचार्य और महात्मा भगवत प्रेम को सर्वोपरि ठहरा चुके थे और उधर सूफी महात्मा मुसलमानों को इश्क हकीकी का सबक पढ़ाते आ रहे थे। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूमिका पे संख्या 1। इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे। संतों आर सूफियों ने एक ऐसी जातीय संस्कृति का निर्माण किया जिसका आधार है प्रेम। प्रेम की पीर एक ऐसा आधार है जहां धर्म पंथ और संप्रदाय की क्षुद्र सीमाएं टूट जाती हैं। शुक्ल जी का विचार है कि कबीर की रूखी वाणी में मनुष्य मनुष्य का रागात्मक संबंध व्यक्त न हो सका। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी हुई थी। यह आवश्यकता इन सूफी कवियों ने पूरी की। इनोटेड कामा। अपनी कहानियों द्वारा उन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। उन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं को ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूमिका पृष्ठ संख्या 2। भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास देखने वाले द्विवेदी जी ने संतों की लोकप्रियता पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए लिखा, यह बात कुछ विरोधाभास से लगती है कि इन दिनों जबकि हिंदू और मुसलमानों की लड़ाइयां आम बात थी, किस प्रकार ऐसा मिलन संभव हो सका। फिर उत्तर दिया कि मध्य युग बहुत कुछ करामातों का युग था। इन करामातों और उनकी ख्याति में लोग परस्पर एक दूसरे की ओर आकृष्ट होते थे। हिंदी साहित्य की भूमिका पृष्ठ संख्या 56। इस तरह के निष्कर्ष 500 वर्षों में सांस्कृतिक सहअस्तित्व के लिए किए गए मानवीय प्रयासों का मूल्यांकन है। जायसी पर विचार करते हुए विद्वानों ने उनके प्रभावों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की है। उन्हें सूफी प्रचारक और उनके ग्रंथ पद्मावत को तसव्वुफ के रूप में ही ज़्यादा व्याख्यायित किया गया है। किसी रचनाकार को समझने के क्रम में एक रुतिमान यह भी हो सकता है कि उसकी रचना किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए रची गई। कवि अपनी कविता में भाषा के सृजनात्मक प्रयोग द्वारा अपने समय में पैठ करते हुए गहरे सच को पा लेता है, और किसी दर्शन या एक विचारधारा को लेकर उपदेशक हो सकता है, कवि नहीं। कविता का लक्ष्य मर्म तक पहुँचना होता है। इस मर्म तक पहुँचने के क्रम में अपने समय में उपलब्ध संपूर्ण मुहावरे को वह एक साधन बनाता है। वह एक जीवन दृष्टि अर्जित करता है जो किसी कृति को ठोस शक्ल देती है। जायसी की अनुभूति की संरचना का एक हिस्सा आध्यात्म एवं दर्शन है, लेकिन उसका ज़्यादा अंश जन के भीतर उनकी पैंट से निर्मित होता है। विजय देव नारायण शाही ने लिखा है, जायसी ने अपनी संवेदना को सृजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए उस युग में परंपरा अथवा रूढ़ी, लोकमानस अथवा काव्यशास्त्र, दर्शन अथवा योग, संस्कृत अथवा फारसी के बहुत सारे उपलब्ध उपादानों का उपयोग किया है। यह उनकी निजी संपत्ति है। इन तमाम उपादानों में अन्य उपादानों की तरह तसव्वुफ का मुहावरा भी आ गया है, लेकिन तसव्वुफ का यह प्रयोग केवल विशिष्ट संदर्भ में भावना को गहराई देने के लिए उसी तरह हुआ है जिस तरह उक्ति की अन्य विशिष्टताओं का। इस प्रकार तसव्वुफ पद्मावत का एक तत्व भी नहीं ठहरता, केवल उपलब्ध कला काव्यात्मक मुहावरे का प्रयोग ही है। जायसी, विजय देव नारायण शाही। जायसी ने लोक जीवन की बड़ी सूक्ष्मता और आत्मीयता से पकड़ा है। लोक जीवन के साथ उनका गहरा रिश्ता उनके कवि व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पूंजी है। अनुभूति की यह पूंजी अपने समय के वैचारिक प्रकर्षों से निकलकर एक घनीभूत बौद्धिकता का निर्माण करती है। अपने इस कर्म को लेकर जायसी बहुत सचेत है। मध्यकाल में प्रायः अपने शब्द साधना को कविकर्म के रूप में परिभाषित करने की परंपरा नहीं रही है। कबीर, सूर, जायसी, किसी ने भी अपने को कवि नहीं कहा है, किंतु पूरे पद्मावत में जायसी ने अपनी पहचान के लिए जब भी कोई विशेषण प्रयोग किया है वह कवि का है। मोहम्मद कवि जो प्रेम का नातन रकत न मास, जो मुख देख सोई हंसा सुनय तो आवयास। कविता के प्रभाव को लेकर भी जायसी स्पष्ट है। सुनय तो आवयास, कविता की भूमिका उनके लिए संवेदना के प्रवाह की है। हिंदी परंपरा में देशभाषा में लिखे जाने वाले काव्य पृथ्वीराज रासो के रचनाकार के लिए भी रचना का भाव कुछ इस प्रकार है। श्रवण ममी संजोगी, अर्थात कविता को सुनने का प्रभाव अमृत की तरह होगा, अमृत तो प्रदान करेगा। लगभग 300 साल बाद दूसरे भाषा के कवि विद्यापति ने भी जसपत्यामय पूर्ण कहते हुए कविता के प्रभाव को पूर्ण फल से जोड़ा था, लेकिन लोक भाषा के कवि जायसी के लिए कविता का प्रभाव सुनय तो आमय आंसू है। जायसी की भाषा बोलचाल के भीतर से काव्यात्मक संस्कार ग्रहण करती हुई अवधीय है। जायसी के पूर्व कविता के भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग मुल्ला दाऊद के चंदायन, लाल दास के हरिचरित्र, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, कुतुबन की मृगावती में हो चुका था। मुल्ला दाऊद से लेकर कुतुबन तक की भाषा पुरानी अवधि है। जायसी अवधि के पहले कवि हैं जिसमें अवधि अपने ठेठ रूप में प्रयुक्त होने के बावजूद अभिवंजना में समर्थ है। जनता के बीच बोलचाल की भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में वही कवि ढाल सकता है जिसे भाषा के निजी स्वभाव की परख हो, उसके टोन की पकड़ हो एवं उसके मुहावरे की अर्थवत्ता को समझता हो। भाषा के भीतर मौजूद गंध को महसूस करना और उसे अभिव्यंजना के स्तर तक ले जाना, यह किसी भी जनभाषा के कवि की ताकत होती है। जायसी की भाषा में अवधि का मिजाज झलकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी की भाषा के संदर्भ में लिखा है, जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है और उसका माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का नहीं। वह संस्कृत की कोमलकांत पदावली पर अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपनी निज की स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। तुलसी की भाषा और जायसी की भाषा में यह बड़ा अंतर है। जायसी की पहुँच अवध में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए माधुर्य स्रोत तक ही थी, अवधि की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। एनोटेट कहावा। जायसी ग्रंथावली आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भूमिका पृष्ठ संख्या 182। इस खालिस मिठास को लेकर भी पद्मावत अपनी अभिव्यंजना में साहित्यिक भाषा का श्रेष्ठ नमूना है। मुल्ला दाऊद से लेकर कुतवंत तक अवधि काव्य भाषा के रूप में वह सहज प्रभाव नहीं पा सकी है जो जायसी की यहाँ अर्जित करती है। जायसी की काव्य भाषा का मूल्यांकन करते हुए विजय देव नारायण शाही लिखते हैं, कबीर अपनी प्रतिभा के सहारे भाषा को ठेल ठेल कर आगे बढ़ाते हैं। उनकी कविता में प्रयास के चिन्ह बराबर दिखते हैं, लेकिन जायसी में पहली बार हिंदी भाषा सहज काव्य प्रवाह में बहने लगती है। हिंदी का अवधि रूप जिसे जायसी ने अपने काव्य भाषा के माध्यम के लिए चुना, समूचा का समूचा काव्यमय हो जाता है। कवि का प्रयास नहीं दिखता, लगता है कि समूची अवधि भाषा कविता ही है जो जायसी की कलम से अपना स्वरूप ग्रहण करती है, चलती है। जब भाषा में इस तरह की अपनी स्वतः स्फूर्त गति दिखे तो हम बेखटके समझ सकते हैं कि हम एक बड़े कवि के सामने खड़े हैं। जायसी, विजय देव नारायण शाही, पृष्ठ संख्या 1। गुण, शब्द, शक्ति, अलंकार, योजनाओं, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता आदि सभी दृष्टियों से वह अपने पहले की अवधि रचनाओं से उत्कृष्ट है। काव्य भाषा में प्रत्येक कार्य की अपनी ध्वनि बहुत सार्थक होती है। भावों के अनुकूल शब्द चयन में जायसी ध्वनियों के विन्यास में सफल है। अनेक भावों के अभिव्यक्ति में मधुर ध्वनियों की योजना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। रंग रात पिए संग निसी जा गए, गरजे चमक चौंक गर ला गए, शीतल बुंद ऊंच चौबाए, हरियर सब देखें संसारा। इस प्रकार कठोर भावों के अभिव्यक्ति में जायसी कर्कश ध्वनियों की योजना करते हैं। जायसी की भाषा में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, प्रतीप, भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग है। श्रादृश्य मूलक अलंकार अपेक्षाकृत अधिक है। इनमें भी उपमा रूपक उत्प्रेक्षा की प्रधानता है। जायसी ने अपने अप्रस्तुत दैनिक जीवन के लिए से लिए हैं। ये हिंडोल अस डोलय मोरा, विरह झुलाए देह झकझोरा, बरसे मघा झकोरी झकारी, मार दुई नयन चुए जस औरी। श्रादृश्य मूलक अलंकार एवं अप्रस्तुतों के सटीक चयन से भाषा के विभिन्न धर्मिता बढ़ती है। काले केशों के बीच मांग की शोभा देखिए, कंचन रेग कसौटी कसी, जनु घन मेह दामिनी पर गति, सूरज किस जनु गगन विसेखी, जमुना माह सुर सती देखी। रूपकातिशयोक्ति भी जायसी का अत्यंत प्रिय अलंकार है। इसके द्वारा कवि ऐसी मनोहर और रमणीक वस्तुओं को सामने रखता है कि हृदय सौंदर्य की भावना में मग्न हो जाता है। रतनारे नेत्रों के बीच झूमती हुई पुतलियों की शोभा और इशारा करते हुए कवि कहता है, राते कवल कराहि अली भौवा, घूम है माति चहाहि अपसौवा। पद्मावत कथा काव्य है और कथा काव्य में अविधा का ही ज्यादा प्रयोग होता है, किंतु व्यंजना और लक्षणा के उदाहरण भी भरपूर हैं। व्यंजना का एक उदाहरण द्रष्टव्य है, पिए से कहे हो संदेशणाय भौराय काग, शोधन विरह जरिमुई तेही का धुआं हमलाग। व्यंजना यह है कि पशु पक्षी जीव जंतु भी उससे प्रभावित हो गए हैं, किंतु तुम कितने पाषाण हृदय हो। एक कवि के रूप में जायसी ने भाषा को नया संस्कार दिया है। गोपितन पृथ्वी, इस तरह के शब्दों को उन्होंने स्वयं गढ़ा है। अवधि भाषा के पुराने और प्रचलित शब्दों को नवीन धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भ में प्रयुक्त किया है, जैसे अल्लाह के लिए करतार या गोसाई, पैगंबर को बसीठ, कुरान को पुराण, शेख बड़े को सिद्ध, उनको प्रणाम करने के लिए आदेश, नाथों एवं सिद्धों में प्रणाम वाचक अर्थ में प्रयुक्त शब्द। जायसी के द्वारा इस तरह के प्रयोग इस बात के सूचक हैं कि जनता के बीच बोलचाल के स्तर पर सांस्कृतिक मिश्रण की प्रक्रिया जोरों पर थी। उनके इस तरह के प्रयोगों का मूल्यांकन करते हुए शाही जी लिखते हैं, जायसी पद्मावत में तथा अन्यत्र भी हिंदू पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मुस्लिम धार्मिक सांप्रदायिक या सांस्कृतिक संदर्भों में करते हैं। इस नितांत नई बौद्धिक भंगिमा से जायसी का संपूर्ण व्यक्तित्व अनुप्राणित है। जायसी में शब्दावली की अद्भुत स्थानांतरणशीलता है और द्विधा शब्द संदर्भों को धुलाकर एक कर देने की क्षमता है। रजायसी पृष्ठ संख्या 14। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या भाव क्या भाषा हर स्तर पर जायसी भिन्न सभ्यताओं के टकराहट के बीच सह अस्तित्व की बनती हुई जमीन में उगे हुए फूल हैं, जिनकी वास आज भी हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य को सुगंधित कर रही है। फूल मरे मरे नवासा।